दूसरा सैमुएल बाब 10। कुछ देर के बाद उमोनियों का बादशाह फौत हुआ और उसका बेटा हनून तख्त नशीन हुआ। दाऊद ने सोचा, नाहिस ने हमेशा मुझ पर मेहरबानी की थी, इसलिए अब मैं भी उसके बेटे हनून पर मेहरबानी करूँगा। उसने बाप की वफात का अफसोस करने के लिए हनून के पास वफद भेजा। लेकिन जब दाऊद के सफीर अमोनियों के दरबार में पहुंच गए तो उस मुल्क के बुजुर्ग हनून बादशाह के कान में मनफी बातें भरने लगे। क्या दाऊद ने इन आदमियों को वाकई सिर्फ इसलिए भेजा है कि वो अफसोस करके आपके बाप का एहतराम करें? हरगिज़ नहीं, ये सिर्फ बहाना है। असल में ये जासूस हैं जो हमारे दारुल हुकूमत के बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हैं ताकि उस पर कब्जा कर सकें। चुनांचे हनून ने दाऊद के आदमियों को पकड़वा कर उनकी दाढ़ियों का आधा हिस्सा मुड़वा दिया और उनके लिबास को कमर से लेकर पांव तक काट कर उतरवाया। इसी हालत में बादशाह ने उन्हें फारिग कर दिया। जब दाऊद को इसकी खबर मिली तो उसने अपने कासिदों को उनसे मिलने के लिए भेजा ताकि उन्हें बताएं, यरीहो में उस वक्त तक ठहरे रहें जब तक आपकी दाढ़ियाँ दोबारा बहाल ना हो जाएं, क्योंकि वो अपनी दाढ़ियों की वजह से बड़ी शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। अमोनियों को खूब मालूम था कि इस हरकत से हम दाऊद के दुश्मन बन गए हैं, इसलिए उन्होंने किराए पर कई जगहों से फौजी तलब किए। बेत रहूब और जुबाह के 20,000 अरामी प्यादा सिपाही, माका का बादशाह 1,000 फौजियों समेत और मुल्क तोब के 12,000 सिपाही उनकी मदद करने आए। जब दाऊद को उसका इल्म हुआ तो उसने युआब को पूरी फौज के साथ उनका मुकाबला करने के लिए भेज दिया। अमोनी अपने दारुल हुकूमत रब्बा से निकलकर शहर के दरवाजे के सामने ही सफ आरा हुए। जब उनके आरामी इत्तेहादी सूबा और रहोब मुल्क तोब और माका के मर्दों समेत कुछ फासले पर खुले मैदान में खड़े हो गए। जब युआब ने जान लिया कि सामने और पीछे दोनों तरफ से हमले का खतरा है तो उसने अपनी फौज को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। सबसे अच्छे फौजियों के साथ वो खुद शाम के सिपाहियों से लड़ने के लिए तैयार हुआ। बाकी आदमियों को उसने अपने भाई अभिषेक के हवाले कर दिया ताकि वो अमोनियों से लड़ें। एक दूसरे से अलग होने से पहले युआब ने अभिषेक से कहा, अगर शाम के फौजी मुझ पर गालिब आने लगें तो मेरे पास आकर मेरी मदद करना, लेकिन अगर आप अमोनियों पर काबू ना पा सकें तो मैं आकर आपकी मदद करूँगा। हौसला रखें, हम दिलेरी से अपनी कौम और अपने खुदा के शहरों के लिए लड़ें और रब वो कुछ होने दे जो उसकी नज़र में ठीक है। युआब ने अपनी फौज के साथ शाम के फौजियों पर हमला किया तो वो उसके सामने से भागने लगे। ये देखकर अमोनी अभिषय से फरार होकर शहर में दाखिल हुए। फिर युआब अमोनियों से लड़ने से बाज आया और यरूशलेम वापस चला गया। जब शाम के फौजियों को शिकस्त की बेइज्जती का एहसास हुआ तो वो दोबारा जमा हो गए। हदद अजर ने दरियाए फरात के पार मेसोपोटामिया में आबाद आरामियों को बुलाया ताकि वो उसकी मदद करें। फिर सब हलाम पहुंच गए। हदद अजर की फौज पर मुकर्रर अफसर सोबक उनकी रहनुमाई कर रहा था। जब दाऊद को खबर मिली तो उसने इसराइल के तमाम लड़ने के काबिल आदमियों को जमा किया और दरियाए यर्दन के पार करके हलाम पहुंच गया। शाम के फौजी सफ़ारा होकर इसराइलियों का मुकाबला करने लगे, लेकिन उन्हें दोबारा शिकस्त मानकर फरार होना पड़ा। इस दफ़ा उनके 700 रथ बानों के अलावा 4,000 प्यादा सिपाही हलाक हुए। दाऊद ने फौज के कमांडर सुबक को इतना ज़ख्मी कर दिया कि वो मैदान जंग में हलाक हो गया। जो आरामी बादशाह पहले हदद अजर के ताबे थे, उन्होंने अब हार मानकर इसराइलियों से सुलह कर ली और उनके ताबे हो गए। उस वक्त से अरामियों ने उमोनियों की मदद करने की फिर जुरत न की।